नमस्ते बैनर भैयों, टिप्स कैसेट कंपनी के माध्यम से मिमिक्री दुनिया के बड़े मियाँ छोटी मियाँ को एक साथ पहली बार पेश किया जा रहा है, जिस कलाकार की वजह से मिमिक्री कलाकारों को इज्जत बख्शी जाती है, जिनके आते ही खुद ब खुद हंसी का माहौल बन जाता है। मैं दावत देने जा रहा हूँ हंसी के बेताज बादशाह मिमिक्री जगत के बड़े मियाँ, आपकी जोरदार तालियों के साथ आ रहे हैं कॉमेडी किंग जॉनी लीवर।
दोस्तों, हम लोग मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। हमारी एक कमजोरी है कि हम लोग हर वक्त यही देखते रहते हैं कि हम लोगों को नमूने, कोई ऐसे कैरेक्टर्स मिले जिन्हें लेकर आपके सामने हम पेश करें। आप लोग भी देखते हैं कई लोग, लेकिन आप लोग दिमाग में नहीं लेते, हम लोग ढूंढते हैं। अभी कुछ लोगों को खामा का आदत होती है बोलने की, खामा का बात करने की आदत होती है, जो जो चीज़ दिखाई दे रहा है उस पर डिस्कस करेंगे। अभी आप बैठे हैं, आपसे पूछेंगे बैठा है क्या? बैठा हूँ यार, क्या मैं नाच रहा हूँ क्या? बैठा हूँ। आप खाना खा रहे हैं, आपको पूछेंगे खाना खा रहे हैं क्या बेड़ो? खा रहा हूँ यार। आप सो रहे हैं, आपको उठा के पूछेंगे सो रहा है क्या? अरे यार नींद खराब कर दिया, पूछा सो रहा है क्या? ये तो फिर भी ठीक है, कोई मर गया है मैयत लेके जा रहे हैं उनसे पूछते हैं मर गया है क्या। अब जो लोग मैयत ले जा रहे हैं उनको कितना गुस्सा आना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, इसको लेटने का शौक है, हमको घुमाने का शौक है। कई नमूने में मिलते हैं ना। हिंदियों की हिंदी बहुत टिपिकल हिंदी होती है, बड़े अच्छे लोग हैं और ऊपर वाले की बहुत बड़ी देन है इनको। इनकी खोपड़ी में कुछ, इनकी खोपड़ी जो है एक्स्ट्रा फिटिंग खोपड़ी है, बहुत खोपड़ी वाले हैं। सिंधी बहनों की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक सिंधी लेडी अपने पति के साथ, अपने हस्बैंड के साथ दोनों निकले शॉपिंग के लिए, खरीदारी करने के लिए निकले हैं। और औरत ने पहले से हस्बैंड को समझा के रखी, मैं शॉपिंग करूँगी तो बीच में टोकना नहीं, आपको खरीदारी करने आता है भावताओं के बीच में बोलना नहीं। आप दोनों निकले और फुटपाथ पे जो धंधा करने वाले होते हैं, तो वहाँ इनको रोड पे कोई प्लास्टिक का साबुन का डिब्बा पसंद आया, सोप बॉक्स। तो उन्होंने पूछा, बाबा ये साबुन का डिब्बा कितने का दिया है? जी ये 3 रुपया। 3 रुपया? इतना महंगा बेचेगा कमाएगा किधर रखेगा? 3 रुपया। होलसेल में इसका कितना भाव है? 3 रुपया। चलो 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 1.5 रुपया लो, 1.5 रुपया। अरे नहीं बहन जी, 1.5 रुपया तो हमारे, 1.5 रुपया तो कहाँ बहन जी? अरे बहन बोलता है बहन से भाव करता है, अभी बहन बोला है ना अपने मुँह से, बहन से कमाएगा पागल कैसा भाई ये। चल बहन जी, 1.5 रुपया तो हमारे घर में नहीं पड़ता है। हाँ तो बहन भाई घर की बात हुआ है ना, थोड़ी बाहर का बात हुआ है, पागल कैसा हट। चल बाहर का कोई आएगा उसके सामने अच्छा नहीं, चल 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 1.5 रुपये ले। अब इनके हस्बैंड को बुरा लगा, ये भी व्यापारी था, उन्होंने कहने छाया तो करे 2.5 रुपया। ये तुम्हारा जीजा जी पागल है, इसकी बात में नहीं आओ, इसको जरा भी अकल नहीं है, पागल है बिल्कुल। अब वो बेचारा धंधे वाला हिल गया यार, भाई जीजा जी अटक गया बेचारा। मैंने कहा अभी बहन जी अभी क्या आपसे बोलने का, अभी आप भाई बोलता है जिया जी बोलता है आपसे क्या लेने का, हटाओ ना वैसे ले जाओ मेरी तरफ से। चलो देखा तुम्हारा साला कितना दिलदार है, बहन के ऊपर कितना प्यार है, ऐसा ही दे दिया। अच्छा भैया एक ही देगा क्या? एक छोटा सा होटल है जिसमें कुछ एक्टर्स हैं, वेटर कुछ कलाकार, जगदीप साहब वेटर हैं, केशव मुखर्जी साहब लाकर देने वाले हैं। जगदीप साहब ने कहा केशव,
केशव इधर हटकमर पानी दे, गिरा के बोलिए है जी, बोलिए क्या खाएंगे आप?
अशोक कुमार जी बैठे थे, उन्होंने कहा वेटर
यहाँ तुम्हारे होटल में वड़ा है? वड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। अरे वड़ा है इतना था, एक प्लेट बढ़ा दी। बोलिए आप क्या खाएंगे?
दूसरी टेबल पे उत्पल दत्त साहब बैठे हुए थे, उत्पल दत्त साहब ने कहा
वेटर यहाँ मेरे नाम उत्पल दत्त है ना, तो मैं हर चीज़ ऊ से खाता हूँ, ऊ से उत्तपा, उपमा, उड़द के दाल का बनाया चीज़, उसल पा, ऊ से खाता।
अरे सब कुछ मिलेगा ऊ से नहीं, मुँह से खाता।
संजू कुमार साहब वो आए, उनको हाथ धोना था, वो वॉश बेसिन ढूंढ रहे थे नल जहाँ धोते हैं। तो वॉश बेसिन पूछा केशव मुखर्जी से, संजू साहब
मेरे हाथ गंदे हैं, इन्हें धोना चाहता हूँ, वॉश बेसिन कहाँ है?
अरे क्या गंदे हैं?
मेरे हाथ गंदे हैं।
तो मेरे हाथ से खाना दे।
बकवास नहीं करो, वॉश बेसिन कहाँ है?
इधर आओ इधर आओ, ये वॉश बेसिन है, नल खोलो धोलो।
यहाँ तो साबुन नहीं है।
अरे तुम नल खोलो सब आएगा, यहाँ साबुन रखता हूँ तो कोई ना कोई ले जाता है, इसलिए हम लोग पूरा साबुन टाके में डाल देते हैं। साबुन का पानी धो ले रे। रामायण में रामलीला होता है और आर्टिस्ट लोग जो होते हैं बेचारे, एक्टिंग जो करते हैं, राम बने, सीता जी, लक्ष्मण जी सब एक्टिंग करने वाले होते हैं, इनको जो प्रोड्यूसर जो हैं वो पैसों के लिए रखड़ाते हैं, तो ये लोग पैसा वसूल करने के लिए कुछ ना कुछ तरकीब सोचते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबको पैसा बराबर मिल रहा था, राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को, रावण को पैसा नहीं मिल रहा था। 500 रुपये देना था, 2 साल से रखड़ा रहा था। अब रावण परेशान, यार 2 साल से रखड़ा रहा मगर इस साल तो मैं वसूल करके छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब 500 रुपये वसूल करने के लिए इनके दिमाग में आइडिया ही आया कि रामायण में रावण मर गया तो रामायण ख़त्म, इसलिए सोचा यार मैं 9 दिन तक काम करूँगा, जब आखिरी दिन जब मुझे मरना है मैं नहीं मरूँगा, जब 500 रुपये नहीं देगा मैं मरूँगा ही नहीं, स्टेज पे नहीं जाऊँगा, जो होगा देखा जाएगा। अब उन्होंने ये सोच लिया, राम जी को पता नहीं, लोग बैठे हुए आखिरी दिन और रावण मरने वाला है, आज राम जी स्टेज पर आ गए, रावण को चैलेंज कर रहे हैं और रावण उस कोने में खड़ा हुआ प्रोड्यूसर को वार्निंग दे रहा है कि मेरा 500। राम जी को पता नहीं, राम जी स्टेज पर लगा हुआ है, कहते हैं कहाँ है रावण? हिम्मत है सामने, पापी दृष्ट राक्षस रावण। वहीं लगाओ। राम जी हैरान, यार अभी तक नहीं आया, चलो भाई ड्रेस वगैरह चेंज कर रहा होगा, लोग बैठे हैं, अच्छा नहीं, जरा एडजस्ट करते हैं। अच्छा लंका की झाड़ियों में छुपे हुए हो राक्षस, मैं तेरी हरकतों को पहचानता हूँ, औरतों पे बुरी नजर रखते हो, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला रावण। कहाँ है रे? वहीं लगा हुआ है। राम जी कहाँ तक एडजस्ट करें, लोग परेशान, राम जी यार हैरान हो गए। प्रोड्यूसर ने कहा यार ये रावण अगर स्टेज पे भी नहीं जाएगा तो लोग परेशान हो जाएंगे, 4-5 बॉडीगार्ड लेकर आया, बोले इसको धकेलो कैसे नहीं जाएगा। अब उस गरीब को धकेल दिया रावण को, अपनी मर्जी से नहीं आया, ज़बरदस्ती आया हुआ। राम जी को तो ऐसे गुस्सा होता, इतना लेट किया, अभी आ रहे हो, ये कोई आने का टाइम है? नॉनसेंस, तेरी मौत मेरे हाथ से थी रावण, तो मेरे हाथ से बच नहीं सकता, ये ले ये अग्निबाण है। राम जी परेशान हो गए, इसने बाण क्यों तोड़ दिया यार, फिर भी वो एडजस्ट कर रहे थे, लोग बैठे हैं, अच्छा नहीं है। अच्छा बाण तोड़ दिए, वो बाण पोकला था, लेकिन रावण इस बाण से तो बचेगा नहीं, ये वायु बाण है। राम जी के पास जितने बाण थे खत्म हुए और ये मरने को तैयार नहीं, और राम जी स्टेज छोड़ के गए और प्रोड्यूसर से बोले वो मरता नहीं है, पूरा बाण तोड़ रहा है, वो क्या मस्करी करता है क्या? उसको बोलो मरना है मरना तो खड्डे में जाओ यार, मेरे को सुबह ड्यूटी पे जाना है, पूरा कचरा कर दे, मेरी फैमिली बैठी अंदर, अपन नहीं जाएंगे स्टेज पे। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? क्या देखो पूरा उसको बाहर निकलो, मैं देखता हूँ, उसको पूरा बांध तोड़ दिया उसने, कचरा कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा यार, मैं कुछ करता हूँ, क्या करता है? अरे मैं कुछ करता हूँ, ठहरो यार। सोचा इसको 500 रुपये देने पड़ेंगे, ये मरने वाला नहीं है। वो 100-100 के 5 मिनट बेचारा मुश्किल से निकाले, निकाल के दूसरे बाण में लगाए, धागा बांधे, ये बाण मार इसी से मरेगा वो। 500 रुपये वाला बाण लेकर राम जी स्टेज पर आ गया रावण। रावण मुझे अभी अभी तेरे अमृत कुंड का पता चला है। रावण ये वो बाण है जिसके लिए लोग सुबह शाम मरते रहते हैं, इससे तेरा बाप भी नहीं बचेगा रावण, ये ले ये रोकड़ा बाण है।
सौ, दो सौ, तीन सौ, चार सौ, पाँच सौ, बराबर है। चलो हट जा।
इस कैसेट को सुनने वाले तमाम भाइयों बहनों को जॉनी रावत का प्यार भरा नमस्कार। प्यारे दोस्तों, डॉक्टरों के साथ भी कभी कभी मज़ेदार बातें होती हैं। एक औरत अपने पति के साथ अस्पताल गई, औरत को चेकअप कराना था, तो उस औरत ने डॉक्टर से कहा,
डॉक्टर साहब, जब आप मेरा चेकअप करने के लिए मुझे अंदर बुलाएं, तो प्लीज़ आपकी नर्स को भी अंदर बुला लेना।
ये सुनकर डॉक्टर साहब बोले, क्यों, आपको मुझ पर विश्वास नहीं?
ये बात नहीं है डॉक्टर साहब, आप पर तो मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन मेरे पति जो बाहर नर्स के साथ बैठे हैं, उन पर नहीं है।
कभी कभी अजनबी जगह का पता पूछते वक्त पता बताने वाले भी ऐसे ऐसे मिल जाते हैं कि वहां पर कॉमेडी कैसे पैदा होती है। कोल्हापुर से आया हुआ एक आदमी मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के बाहर खड़े होकर पता ढूंढ रहा था। कोल्हापुर से किसी ने उसे पार्सल दिया था जो उसे कप परेड में अश्विन पारेख नाम के किसी आदमी को देना था। उसने एक सिंधी भाई से पता पूछा किस तरह से,
ओ साहेब, साहेब ये पता मांगता है पार्सल पहुंचाने का है, ये कप परेड जाने का है साहेब।
अच्छा कप परेड, अच्छा चिड़िया कप परेड जाने का है, अच्छा कप परेड में किसके पास जाएगा चिड़िया?
अभी कप परेड में बोलेगा तो वो अपना ये अश्विन पारेख के पास जाने का है, देखो।
अच्छा अश्विन पारेख, अच्छा अश्विन पारेख, अरे बाबा नाम किधर तो भी सुना सुना लगता है यार। अच्छा अश्विन पारेख, ये आशा पारेख कलर का तो नहीं चिड़िया? वो चिकना चिकना गोविंदा जैसा?
अबे हमको क्या मालूम बाबा कौन आशा पारेख न कौन गोविंदा। अबे हमको ये कोल्हापुर से पार्सल दिया बोला कप परेड में जाने का, अनु अश्विन पारेख नाम का आदमी है उसको ये पार्सल देने का। अबे हम मुंबई में नया है ना बाबा, अबे हमको क्या मालूम किधर है कप परेड न किधर है अश्विन पारेख।
अरे पर हमको मालूम है ना चिड़िया, अरे कप परेड में तो हमरे था यार। अच्छा तुम ऐसा करो, अभी तुम इधर से सीधा जाएगा तो ताजमहल गिरेगा।
क्या ताजमहल गिरेगा?
अरे ताजमहल मतलब ताजमहल होटल गिरेगा। अच्छा उसके बाद थोड़ा आगे जाएगा तो रीगल सिनेमा गिरेगा।
अभी वो भी गिरेगा क्या?
अरे चिड़िया मतलब की बात सुनो पागल, मतलब की बात सुनो। अच्छा थोड़ा सा और आगे जाएगा तो मंत्रालय गिरेगा।
अरे बाप रे, आना मंत्रालय पन गिरेगा?
अरे गिरेगा बाबा, पक्का गिरेगा, 100% गिरेगा। अच्छा तुम गिरने का छोड़ो यार, थोड़ा और आगे जाओ। अभी तुम थोड़ा आगे जाएगा तो बस स्टॉप गिरेगा।
अरे या जाए ला, बस स्टॉप भी गिरेगा?
अरे चेड़िया बीच बीच में बकबक मत करो यार, अरे पूरा बात सुनो। अच्छा अभी तुम थोड़ा और आगे जाएगा तो उधर इतना लंबा चौड़ा एयर इंडिया बिल्डिंग गिरेगा।
बिल्डिंग पन गिरेगा या जाए?
अरे तुमको क्या यार, अभी तुमको क्या यार, तुमको तो कब परेड पहुंचने से मतलब है ना। अच्छा अभी थोड़ा सर्कल के बीच में आएगा तो तुमको सिग्नल गिरेगा, और सिग्नल को लग के फ्लोरा फाउंटेन गिरेगा यार।
अरे जाएला अभी क्या क्या गिरेगा बाबा?
अभी ज्यादा नहीं गिरेगा यार, अभी थोड़ा ही गिरेगा। अच्छा अभी तुम फ्लोरा फाउंटेन गिरने के बाद आगे जाएगा तो एक लंबा चौड़ा पुलिस स्टेशन गिरेगा।
अरे देवा जमा, पुलिस स्टेशन भी गिरेगा?
अरे बाबा गिरेगा बोलेगा तो पक्का गिरेगा यार, तुम चिंता मत करो। अच्छा साई थोड़ा तुम और आगे जाएगा तो टाटा कालनी गिरेगा। अच्छा वो टाटा कालनी को लग के, अरे यार वहां पर फारसी कालनी गिरेगा, और फारसी कालनी के बाजू में हमारा लोग का सिंधी कालनी है, वो भी गिरेगा यार। तुम चिंता मत करो यार, तुम पक्का पहुंचेगा। उसके बाद तुम्हारा वो अश्विन पारेख गिरेगा यार, मेरा मतलब है वो तुम्हारा कप परेड गिरेगा यार।
इतना सुनने के बाद उस आदमी ने अपना सामान उठाया और सीधे भाग खड़ा हुआ। सिंधी भाई बोला,
अरे चिड़िया इधर आओ यार, किधर भागता है यार, इधर आओ बाबा, अरे किधर जाता यार, कब पड़े ने नहीं जाएगा क्या?
तो आदमी बोला, अरे बाबा मेरे जाने से इतना कुछ गिरता है तो मैं उधर काहे को जाएगा, सीधा कोल्हापुर जाता है बाबा।
एक औरत अपने दुबले पतले अधमरे से कमजोर पति को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची और बोली,
डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे पति को पता नहीं क्या हो गया है, रात को सोते समय सिर्फ बड़बड़ करते हैं और कुछ नहीं करते, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाते रहते हैं, प्लीज डॉक्टर साहब आप इनका चेकअप करके मुझे बताइए ना, मुझे बताइए ना इनकी आदत कब छूटेगी डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब बोले,
देखिए घबराने की कोई बात नहीं, इनका चेकअप करने की कोई जरूरत नहीं, ये ठीक हो सकते हैं, इनकी रात की बड़बड़ाने की आदत जा सकती है। ये सुनकर औरत बोली,
सच डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है?
डॉक्टर बोले, अरे बहुत आसान तरीका है, आप इन्हें दिन में बोलने का मौका दें।
दो सहेलियां बरसों के बाद मिली तो एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा,
अनीता, वाह, नई नई कार, नए नए गहने, नई नई साड़ी, तुम तो काफी पैसे वाली हो गई हो, काफी दौलत इकट्ठा कर ली क्या तुमने? लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे?
तो अनीता बोली,
अरे चमत्कार कैसा, बात दरअसल ऐसी है, मैंने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से दोस्ती कर ली, यू नो फ्रेंडशिप। अच्छा, फिर क्या हुआ अनीता? अरे फिर क्या, फिर मैं उसके बिजनेस में पार्टनर बन गई, मेरे पास तो एक्सपीरियंस था ही और उसके पास पैसा, फिर अनीता, बस फिर क्या, अब उसके पास एक्सपीरियंस है और मेरे पास पैसा।
पड़ोसी औरतों की बातें भी बड़ी अजीब होती हैं, जो हमेशा दुख सुख में साथ निभाती हैं। ऐसी ही एक औरत रात के 12 बजे अपनी पड़ोसन के पास आई और बोली,
बहन जी माफ करना, आधी रात को तुम्हें तकलीफ दे रही हूँ।
पड़ोसन बोली,
अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बोलो बहन क्या बात है?
तो वो बोली,
बहन बात दरअसल ये है, मुझे तुम्हारा जरा बेलन चाहिए। बेलन चाहिए क्यों? वो क्या है ना कि वो अभी अभी घर आए हैं, जरा पूछताछ करनी है।
ये सुनकर पड़ोसन बोली,
बेलन तो दे देती हूँ तुम्हें, लेकिन जरा जल्दी लौटाना, क्योंकि मेरे वो अभी लौटने वाले हैं।
डॉक्टर शर्मा के घर के फोन की घंटी बजी। डॉक्टर साहब ने फोन उठाया और थोड़ी ही देर में फोन नीचे रख दिया। अपनी लड़की से बोले,
पिंकी जरा मेरे विजिट की बैग तो लाना, लगता है बहुत बीमार है कोई। कह रहा था आंखों में नींद नहीं है, भूख प्यास नहीं लगती, दिल बेचैन रहता है, जल्दी करो वरना मैं मर जाऊंगा।
ये सुनकर डॉक्टर साहब की लड़की बोली,
फिर पापा रहने दीजिए आप, ये फोन आपका नहीं मेरा था।
एक जेल में दो चोर आपस में बातें कर रहे थे, उनमें से एक को फांसी होने वाली थी तो दूसरे ने पूछा,
यार सुना है तुमको फांसी होने वाली है?
तो बोला,
हाँ यार डेट भी फिक्स हो गई लिए, अपन को 24 तारीख को पक्की फांसी होने वाली है। 24 तारीख को? लेकिन यार तुमने ऐसा किया क्या? अभी क्या बोलूं यार, मैंने क्या किया मालूम है, एक मक्की के ऊपर हथौड़ा मारा, हथौड़ा भी कौन था, पत्थर तोड़ने का।
क्या मक्खी को हथौड़ा मारा? मक्खी को मारने की सजा फांसी? अरे यार मक्खी तो अपन भी मारता है, लेकिन अभी तक अपन को कभी फांसी नहीं हुई। वो क्या है ना यार, वो मक्खी जो थी ना, वो एक टकले के सिर पे बैठी थी यार।
आजकल एक गाना ऐसा आया है जिसे सुनकर हर लड़का आने जाने वाली लड़कियों को देखकर यही कहता है,
हे आती क्या खंडाला।
लड़कियां तो खंडाला गई नहीं, लेकिन बेचारे लड़के अंदर बंद हो गए हैं। ऐसे ही एक टपोरी भाई हमेशा एक भैया के होटल में बिना पैसे दिए खा पी लेता था। भैया भी उससे बहुत परेशान था और मौके की तलाश में था। एक दिन भाई गुलाम फिल्म देखकर आया और खंडाला गीत उसके दिमाग में भरा हुआ था और वो हमेशा की तरह भैया के होटल में पहुंचा और खंडाला गीत के अंदाज में भैया से बोला,
ए, क्या देखता है तू?
है का देखें हम?
सुन,
सुनावा,
जल्दी से खंडाला पी के तू
रोज जाए है फोकट का। अरे ठंडा नहीं हो हमरे होटल में, पहले तू पैसा ला।
तू बेशानी आए का चुप बैठे क्या?
कहा
अभी जल्दी से ठंडा ला।
फिर बोला का समझ में आवे ना? अरे देंगे नहीं हम तोहका उधारी, पहले तू पैसा ला।
ए, क्या बोलता है तू?
अरे हम ठीक बोल रहा हूँ, पहले का उधारी तो चुकाओ भाई, ना है तो पत्या का बात कर रहा है।
किसी होटल छोड़ के तेरे ढाबे पे मैं आया, आप उनके आने से तेरा धंधा चलता है भैया। तोहरी जेब में पैसा नहीं, ठंडा कहाँ से लाए, ऐसी होटल का ही रोब हमसे काहे बतिया है। ए चल जाने तो जल्दी से अंडा ला,
अरे का समझे हमरी ये होटल वा, अंडा नहीं हो ठंडा नहीं हो चाहे तू डंडा खा।
ए क्या बोलता है तू?
अरे हम ठीक बोल रहा हूँ, पहले पैसा निकाला नहीं तो हड्डियां तोड़ दे, छतिया पे चढ़ जा।
भाइयों बहनों, टाइटैनिक फिल्म जब नई नई लगी थी तब इस फिल्म का क्रेज इतना बढ़ गया था कि थिएटर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती थीं, लोग टाइटैनिक फिल्म की टिकटें ब्लैक में खरीदते थे। मैं भी एक दिन टाइटैनिक फिल्म देखने के लिए चला गया तो अचानक फिल्म बीच में ही रुकवा दी गई और थिएटर का मैनेजर थिएटर के अंदर आया और अनाउंसमेंट करते हुए बोला,
देखिए हम जानते हैं कि टाइटैनिक फिल्म का क्रेज बहुत बढ़ गया है, लेकिन इतना भी क्रेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक शिकायत आई है, एक आदमी जिसकी पत्नी पराए मर्द के साथ ये फिल्म देखने के लिए आई है। मेरी गुजारिश है जो भी औरत है अंधेरा होते ही चुपचाप इज्जत के साथ गेट के बाहर चली जाए।
कुछ देर के बाद मैंने देखा थिएटर में जितनी भी औरतें थी सब की सब बाहर जा चुकी थी। ऐसा था टाइटैनिक का क्रेज। इसी तरह हमारे मोहल्ले के एक भैया जी ने सोचा कि टाइटैनिक फिल्म जाके देखना चाहिए, तो वो टाइटैनिक फिल्म देखने के लिए चला गया और दूसरे दिन दूसरे भैया ने उससे पूछा,
अरे गिरधारी कल दिखाई नहीं दिया रहा, दूध का धंधा बंद करके कहाँ गया था?
कौन हम? अरे हम तो गया रहा सिनेमा देखने, सब बोलता रहा बड़ा मजेदार सिनेमा है, तो हम भी सोचा इस सिनेमा में कौनो मजा है वो देखना चाहिए।
अरे लेकिन गिरधारे कौन सा सिनेमा देखा रहा, तनिक हमको भी बताओ।
अरे बड़ा गजब का नाम रहा भाई, समझ में नहीं आता का नाम रहा, टाइटैनिक रहा कि का काइनेटिक रहा, नहीं टाइटैनिक सिनेमा देखा रहा।
टाइटैनिक, ये कौन सा सिनेमा है भाई?
अरे हाँ टाइटैनिक, वो सिनेमा देखे खातिर बड़ा मुसीबत उठाना पड़ा भाई। का हुआ? हम एक को पूछे रहे भैया ये टाइटैनिक सिनेमा कहाँ लगा है, तो वो बोले मराठा मंदिर में लगा है, मराठा मंदिर में। अरे का बताएं, सुबह के निकले रहे तो शाम को पहुंचे मराठा मंदिर। हाँ मराठा मंदिर में गया रहा, सबसे पहले गेटवा पे जूता उतारा और फिर मंदिर को 2 बार प्रणाम किए और पीछे मुड़ के देखता हूँ तो का अरे हमारा जूता गायब हो गया। हम कहा यार इस सिनेमा का चक्कर में बड़ा घाटा हुई गवा, राम खिलावन का जूता पहन के आया था वो गायब हो गया। बाद में कहा देखता हूँ इतना लंबा लाइन रहा कि हम परेशान हो गया। हम एक बाबू से पूछे, का बाबू यहाँ प्रसाद मिलता है का? तो वो बोले नहीं यहाँ टाइटैनिक का टिकट मिलता है। अरे हम जैसे तैसे लाइन में खड़े रहे, जब हमारा नंबर आया तो हमको बोला टिकट खत्म हो गया। हम बोले ऐसे कैसे टिकट खत्म हो गया, हम तो काफी देर से खड़ा हूँ। तो वो बोले बाहर वो आदमी दिख रहा है वो ब्लैक में बेच रहा है उससे ले लो। तो हम हुआ से दौड़े ब्लैक वाले से, बोले हमको एक ब्लैक टिकट चाहिए, तो वो हमका टिकट दिया रहा। तो हम कहा अरे ये ब्लैक कहाँ है, अरे ये तो लाल है। बाद में क्या हुआ, हम पहुंच गए सिनेमा हॉल, टार्च मैन को टिकट दिखाया, हम कहा हमको सबसे आगे बैठना है, वो हमका एकदम आगे बिठा दिया रहा। आगे से सिनेमा देखने में बड़ा मजा आता है भाई, चिल्लर फेंकने में मजा आता है, सब कुछ खुल्ला खुल्ला दिखता है, ज्यादा झुकने का जरूरत नहीं पड़ता। हाँ
ये बात तो एकदम सही है भाई, लेकिन गिरधारी बाद में क्या हुआ
पर्दा के ऊपर एक बड़ा बोट आता है, बोट मतलब पानी का जहाज। तो हम बगल में बैठे रहे चाचा से पूछे, चाचा सिनेमा कब शुरू होगा? तो चाचा बोले अरे यही सिनेमा है, शुरू हो गया है। तो हम कहे अरे ससुर का नाती यही सिनेमा है, यही देखने वास्ते 200 रुपए का टिकट खरीदा हूँ, धत तेरे की। अब वो टाइटैनिक में कहा दिखाया है ए बुधनवा, बिड़िया बिड़िया फेंका, सुना जरा क्या हुआ, ये टाइटैनिक में कहा दिखाया है, पूरा जहाज पे सिनेमा बनाया है, एक बात रोड पे नहीं हुआ है, पूरा काम जहाज में। अरे हम सोचे टाइटैनिक कौन हीरो का नाम होगा, हीरोनी का नाम होगा, अरे वो तो जहाज का नाम रहा और हीरो का नाम रहा जैक। क्या रहा? जैक। हम कहें ये कैसा नाम है जैक। हम कहा अरे नाम रखना था तो कौनो अच्छा नाम रखते, राधे श्याम राम गोपाल पुत्तन पांडे गजोदन सेवालाल, ये कौन सा नाम है जैक। अरे जैक तो गाड़ी के नीचे लगाते हैं भाई, ये पर्दा पे क्या कर रहा है। अरे हमका का भाई, हमको तो सिनेमा देखने से मतलब था।
लेकिन गिरधारी उसके आगे का हुआ वो तो सुनाओ।
अरे का सुनाए भाई, पूरा पिक्चर में खचर फचर खचर पचर चलता रहा, एक बात हमारे पल्ले ना पड़ी। पर हाँ उस ससुर का नाती जो हीरो रहा, बार बार एक बात जरूर बोलता रहा, हम पूरा देश का किंग हूँ, ये पूरा वोट हमारा है, हम सिनेमा बनाया है। हम कहा हाँ ठीक है भाई, कुछ और भी बोला पर बात बात पर यही बोलता रहा, आई एम ए किंग ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा दिमाग खराब किया है इस ससुर का नाती के पूछो मत। लेकिन एक बात बड़ा मजेदार दिखाया है।
कहा दिखाया है रे गिरधारी वो तो सुनाओ।
अरे हीरो जो है हीरोइनी को लेके कमरे में जाता है, हीरोइनी क्या करती है, गले का हार छोड़ के एक एक करके सब कुछ उतार देती है।
क्या बात है, ऐसा होना चाहिए, तब सिनेमा देखने में मजा आता है।
अरे बाद में क्या होता है, हीरो कहता है लेटो जरा हिया लेटो, हम बोला ऐसा होना चाहिए तभी मजा आता है। बाद में क्या दिखाया है, धत एकदम फालतू दिखाया है।
क्या दिखाया है रे गिरधारी।
अरे क्या दिखाया है पूछो नहीं। अरे हीरोनी लेटी रहती है और हीरो जो है चित्र बनाता है, फोटो बनाता है। हम कहा जब वो लेटी है तो तौका फोटो बनाने का क्या जरूरत है, पूरा मूड खराब कर दिया। अरे ये फोटो बनाता रहा, टाइम बर्बाद करता रहा, ससुरा हमरे बात नहीं माना, वही किस्सा खत्म हो गया, एकदम फालतू सिनेमा है टाइटैनिक। पर एक बात हमका समझ में नहीं आई बुधनवा।
अच्छा वो का?
अरे पब्लिक इतना आता है भीड़ करके सिनेमा देखने, लड़की आता है लड़का आता है, पर इस सिनेमा में देखने जैसा कुछ नहीं है, खाली बोट है। हाँ
अरे गिरधारी बाद में क्या हुआ वो तो बताओ।
अरे बाद में क्या, बाद में मजा मस्ती होता है, पीना पिलाना होता है, फिर उसके बाद जहाज जो है एक बर्फ के पहाड़ से टकराता है, जहाज को छेद हो जाता है, पूरा जहाज में पानी पानी हो जाता है, जैसे 1954 में हमारे गांव में बाढ़ आया था वैसा बाढ़ जहाज में आता है, सब मुसाफिर डर जाता है, जहाज का दो टुकड़ा हो जाता है, बाद में दोनों टुकड़ा जो है पानी में डूब जाता है।
बाद में क्या होता है रे गिरधारी तनिक सुनाओ।
अरे कहाँ सुनाए, हीरोइन को छोड़ के सब कुछ डूब जाता है, जहाज में बैठा सब आदमी डूब गया, ड्राइवर डूब गया, कंडक्टर डूब गया और हीरो भी डूब गया।
अरे और काका डूबा है रे गिरधारी।
अरे और का डूबेगा भैया, और हमारा पैसा डूब गया, खेल खत्म, पैसा हजम, चला बिड़िया पिलावा।